जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 10 श्लोक संख्या 25 पर 11 जनवरी 2016 को इस्कॉन पुणे में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाई भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 25। ना विक्या विश्वासुरसकस्य समीन मिताभि मते सवापि महादिपानात् स्वाकृतादिमद्रम् नाक्षयदुराद् अपि सुरापनि विक्रिया विश्वासुरसकस्य समीन मिताभि मते स्वापि महाभिमानात् स्वाकृतादिमद्रम् अनक्षयदुराद् अपि सुरापनि न विक्रिया विश्वासुरसकस्य समीन मिताभि मते समापि महाभिमानात् स्वाकृतादिमद्रम् अनक्षयदुराद् अपि सुरापनि।
अनुवाद। हे स्वामी, कृपया दोहराइए। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा है, अतः आप सबों के लिए समान है और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त है। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला। आप दृढ़ संकल्प है जबकि मैं अपराधी हूं, इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हो, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की महाराज रहुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भलीभांति परिचित थे, अतः वे जड़ भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए महाराज रहुगण के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध न करे। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत मध्य 13 में कहते हैं, शूल पाणी सम यदि भक्त निंदा करे भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। हे न वैष्णवेर निंदे सर्वज्ञ हई, से जनेर अधपात सर्वशास्त्र कई। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी शिवजी के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आत्मपद से गिर जाएगा। यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। उन्होंने चैतन्य भागवत मध्य 22 में यह भी कहा है, वैष्णवेर निंदा करी बेक जार गण, तार रक्षा सामर्थ्य नाहीक कोन जन। शूल पाणी समझ यदि वैष्णवेर निंदे तथापि यह नाश जाय कहे शास्त्र वृंदे। इहा न मानिया जे सुजन निंदा करे, जनमे जनमे से पापिष्ट दैव दोषे मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह शिवजी के समान बलशाली क्यों न हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो इसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।
हरे कृष्ण। नाभि क्रिया वैश्वासुरा सकाशिया समीन मिताभि मते सवापि महान विपना साकृता दि मदरन अधूरादपि सुरापन पानी। तीन श्लोक उच्चारण महान रोगना कर रहे हैं। पांचवें स्कंद में आप भगवान ऋषभ देव की शिक्षा प्राप्त करते हो। ऋषभ शब्द का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, और भगवान ऋषभ देव भगवान के अवतार थे जिनके 100 पुत्र थे। और ऋषभ देव भगवान ने हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा ना हम दया बाजम लोगे, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का पशु समान उपयोग मत करो। उनके 100 पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, भारत मनाज का राज्य इतना धार्मिक था कि पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, समाज में किसी प्रकार का क्लेश नहीं था और पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। आज तो आप जब भारत शब्द का उपयोग करो तो आप जो भारत देखते हो वो बहुत छोटा है। भारतवर्ष पूरे पृथ्वी को कहा जाता था। और भारत महाराज ने राज्य किया, जिसके पश्चात वो जंगल में गए, जहाँ की एक हिरण के प्रति आकर्षित हो गए थे। और क्योंकि इतना गहरा चिंतन था उस हिरण के विषय में, जब वो हिरण नजरों से दूर था तो उसको खोजते खोजते उनका ध्यान हो गया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यह मैं वापिस स्मरण भवाम, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का ध्येय प्राप्त होगा। इसलिए शास्त्रों का निर्णय है अंत्य नारायण स्मृति। इस प्रकार की योजना बनाओ कि मृत्यु के समय आपका मन कहाँ रहेगा, भगवान के चरण कमलों में। यह रहेगा केवल अगर आप जिंदगी भर इस विषय का अभ्यास करोगे। तो भारत महाराज को पशु के रूप में जीवन ग्रहण करना पड़ा, पर क्योंकि उन्होंने भक्ति भी की थी, ज़्यादा समय नहीं रहना पड़ा इस देह में। और उन्होंने फिर जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें उनका नाम था जद भारत। भगवान की कृपा से जद भारत समझ पाए कि पूर्व जन्म में क्या गलतियां उन्होंने की थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि इस देह में मैंने गलती नहीं करना। ब्राह्मण थे और उन्होंने ये निर्णय किया कि समाज में मैंने गुंग और बहरे का व्यवहार करना है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे पर जलवा में जुड़ने के लिए या किसी प्रकार के भौतिक कार्य में जुड़ने के लिए, पर थे वो आत्मज्ञानी, उनके पास पूरा ज्ञान था शास्त्रों का। तो ये था उनका व्यवहार। और लंबे थे, बड़े कंधों के, तो महाराज रहोगे ना कथा सुनने जा रहे थे। कहा जाता है कि वो कपिल आश्रम जा रहे थे कथा सुनने के लिए। वो एक कपिल आश्रम कुछ कुरुक्षेत्र में भी है, और उनको पलकी में उठाया जा रहा था। प्राचीन समय में जो हमारे राजा होते थे या प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्हें पलकी में उठाया जाता था। आज जैसे मोटरें नहीं थी उस समय, तो राजा को पलकी में उठाया जा रहा था। और राजा जा रहा था कथा सुनने के लिए। अब मोटर में जा रहे हो तो देर हो रही है, अब एस्केलेटर को दबा दो तेज हो जाएगी मोटर। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, कथा सुना है मैंने। तो सेवकों ने कहा, हमें और किसी व्यक्ति की जरूरत है तेजी से चलने के लिए। वहां उन्होंने देखा है बहुत लंबा, बड़े कंधों का, बड़े हाथों के साथ बड़ा सुंदर व्यक्ति। तो उसने कहा कि हे राजा की पलकी उठाने में सहयोग दीजिएगा। जजबारा तो गुंगे और बहरे का व्यवहार रख कर रहे थे, तो जुड़ गए साथ जुड़ गए। पर पलकी को तेजी से जाने के बजाय क्या परिणाम हुआ, धीमे जाने लगे और अनिमन ठीक नहीं। तो अंतर क्या था, कारण क्या था? जैत भारत जो नया भाग व्यक्ति उन्होंने जोड़ा था, ये था ऊंचे कोटि का ब्राह्मण, और वो अपने पैरों को पृथ्वी पर नहीं रखता था जब तक वो ये नहीं देखता था कि आगे 3 कदम तक कोई चीटी कीड़ा तो नहीं हो। ये है भक्त और भक्त का अंतर। भक्त किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। चैतन्य चरितमृत में आप कथा पढ़ते हो, एक शिकारी की जो जानवरों को घायल करके बड़ा आनंद उठाता था। नारद मुनि की संगत से ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो अपने पैरों को पृथ्वी पर नहीं रखता था ये देखे बिना कोई चींटी या कीड़ा तो नहीं आ रहा नीचे। तो ये है ब्राह्मण का व्यवहार, वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। ये नहीं कि धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं पर अत्याचार करो। हमारे हिंदुओं में भी कई जगह धर्म के नाम पर पशुओं को पर अत्याचार किया जाता है। आप नेपाल में जाओ, कई मंदिर हैं जहाँ बड़ी बुरी स्थिति है, धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं को चढ़ाया जाता है। तो पालकी इतनी तेजी की वजह आस्ते आस्ते चलने लगी, जिसके कारण राजा को बड़ा गुस्सा आया। हालांकि राजा कथा सुनने जा रहा था, क्योंकि राजा था थोड़ा राजिक गुण का प्रभाव था। राजा ने डांटा सेवक को, क्या है, मैंने कहा तेजी से जाओ, तुम आस्ते आस्ते जा रहे हो, क्या कारण है? दूसरे सेवकों ने कहा, साहब हमें मत डांटो, हम इसके कारण नहीं है, ये जो नया व्यक्ति हमने जोड़ा है इसके कारण ये पलकी तेज नहीं जा रही। तो राजा ने फिर इस जत भारत को डांटा, तुम जानते नहीं मैं कौन हो, राजा हूं। शुरू में तो जत भारत ने सबको सह लिया, फिर जब जत भारत ने देखा कि राजा अपराधों को बढ़ाते जा रहा है, फिर जत भारत बोले। और जब जत भारत ने उपदेश दिया तो दुर्योधन समझ गए, क्या समझ गए कि ये जो व्यक्ति है ये गूंगा या बहरा नहीं है जैसे मैंने सोचा था, ये मूर्ख नहीं है जैसे मैंने सोचा था, ये व्यक्ति तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, आध्यात्मिक ज्ञान को जानता है। और क्योंकि राजा के पास आध्यात्मिक ज्ञान था, वो तुरंत पहचान लिया क्या कि मैंने अपराध किया है, और ये अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम है। तो पिछले श्लोक में भी ये 25वां श्लोक है, 24वें श्लोक में भी राजा क्या कह रहा है, मैंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया है, मैंने आपकी बेइज्जती कर दी है। तो राजा स्वीकार कर रहा है, मैंने अपराध किया है, बेइज्जती की है, मैं मेरे में झूठा अहंकार है कि मैं राजा हूं, पर मैंने आपके प्रति अपराध किया है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं इस अपराध के परिणाम से बचना चाहता हूं। यह संदेश दिया था राजा ने 24वें श्लोक में। तो आइए 25वें श्लोक में इसी विषय पर राजा बल दे रहा है और जद भारत के कई गुणों का वर्णन कर रहा है, जो क्योंकि राजा के पास अध्यात्मिक ज्ञान था तो वो पहचान पाया कि जद भारत में अनेक गुण हैं जो कि किसी संत में होने चाहिए। उदाहरण के लिए राजा ने क्या कहा, हे मेरे स्वामी, उन्होंने स्वीकार कर लिया ये मेरे स्वामी हैं। और पीछे आगे जाकर आप देखोगे कि रघुगणा ने जद भारत की शरण ली तो बड़े आदर के साथ क्या कह रहे, हे मेरे स्वामी, तुम भगवान के मित्र हो, भगवान और तुम हर व्यक्ति के मित्र हो। जब कपिला देव भगवान ने कहा, साधु के लक्षणों का वर्णन किया, तितिक्षा करू ने कहा, सूरदास सर्वदैनम अजता सर्वसंत साधु और साधु भूषण, भगवान का जो भक्त है वो सबका मित्र है, किसी का शत्रु नहीं। प्रहलाद महाराज के पिता की इच्छा थी कि बेटे को राजनीतिक शिक्षा दी जाए। राजनीतिक शिक्षा का सार क्या है, समाज का बंटवारा करना, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। प्रहलाद ने कहा, मुझे ये शिक्षा नहीं चाहिए, सभी मेरे मित्र हैं। तो भगवान का जो भक्त है वो किसी को शत्रु के रूप में नहीं स्वीकार करता, जो उसकी आलोचना कर रहे उसे भी अपना मित्र ही मानता है। तो यहाँ महान रघुनाथ कह रहे हैं, क्योंकि जद भारत भगवान के शरणागत भक्त है, वो क्या है, सबके मित्र है। और परम भगवान क्या है, सबके पिता, हम बीजा प्रदा पिता, मैं हूँ सब व्यक्तियों का पिता। आप सबके प्रति समानता का व्यवहार करते हो, यह है भक्त का लक्षण, सबके प्रति समानता का भाव। ये नहीं जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, ये मित्र है ये शत्रु है। भक्त जो है सबके प्रति समानता का भाव रखता है। और आप भौतिक ध्येय की पहचान से मुक्त हो। जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि ये जो ध्येय है केवल थोड़े समय का साथी है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ के भगवान अनेक श्लोकों के द्वारा आत्मा के विषय में हमें ज्ञान देते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा है कि जो दूसरा अध्याय है भगवद गीता का, ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है इस शिक्षा के साथ। किस शिक्षा, कि तुम ये ध्येय नहीं हो, न जायते मृत्ये वा कदाचन, आत्मा का ना जन्म होता कभी ना मृत्यु होती। तो जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा एक ध्येय को स्वीकार त्याग कर अगला ध्येय स्वीकार करती है। तो जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है कि ये ध्येय जो है थोड़े समय का साथी है, और इस ध्येय का हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में और इंद्र तृप्ति के कार्य के लिए नहीं। तो जद भारत के विषय में महाराज ढोंगरा कह रहे हैं कि ये भौतिक देह की पहचान से आप मुक्त हो। आगे वो कहते हैं, मैंने आपका अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है, आप पर मैं चिल्लाया हूं, डांटा आपको, पर इसका आप पर कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो इतनी सरलता से विचलित नहीं हो जाता, क्योंकि वो दृढ़ भाव से भक्ति में जुड़ा है। जैसे रूपा गोस्वामी जी श्री उपदेश्वर मित्र में कहते हैं, अगर आप भक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य, दृढ़ होकर हमें भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। और इस विषय पर प्रभुपाद जी भगवद गीता में बड़ा सरल उदाहरण देते हैं, एक पक्षी का जिसके बच्चे सागर ने चुरा लिए थे। पक्षी ने कहा लुटाओ इन बच्चों को, और सागर ने क्या कहा, नहीं। पक्षी ने कहा तो नहीं लुटाओगे तो मैं अपने छोटे मुंह से तुम्हें साफ कर सुखा दूंगी। तो सागर हंसने लगा, हाँ सुखा दो, उठ सुखाओ सागर को, छोटे मुंह से कितना, एक टीस्पून पानी भी नहीं निकलेगा, पर उसमें ये भाव था मुझे अपने बच्चों को वापस प्राप्त करना है। तो ये देखा जाए असंभव कार्य था, जब भी दृढ़ होकर उसने प्रयास किया। और सूचना जब गुरुदत्त को पहुंची तो गुरुदत्त ने आकर सहयोग दिया। तो उसी प्रकार हम जब भक्ति योग में जुड़ते हैं तो हमारे में भी ये दृढ़ भाव होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो हमने भक्ति के मार्ग से जुदा नहीं होना, हमने हर स्थिति में भक्ति की विधियों का पालन करना है। तो यही संदेश रघुनाथ दे रहे हैं, कह रहे हैं आप तो दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़े हो, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए हालांकि मैंने आपकी बेइज्जती की पर आपको इस पर कोई असर नहीं पड़ा। साधारण स्थिति में कोई बेइज्जती करे तो हम क्या सोचते हैं, तुरंत नेले पे देला, तुमने मेरी बेइज्जती की मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, तुमने एक थप्पड़ मारा मैं दो थप्पड़ मारूंगा। और जो भक्त है वो अत्यंत सहनशील होता है, तो कठिन परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। तो आगे जाकर जद भारत महाराज ढोंगरा क्या कह रहे हैं, आगे जाकर कह रहे हैं, मैंने एक महान अपराध किया है आपके प्रति, वो चाहे मैं शिव जी जितना बलवान क्यों ना हूं, मैं नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वैष्णव के चरण कमलों में क्या किया है, अपराध किया है। वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करना का बड़ा भयंकर परिणाम होता है, इसलिए शास्त्रों में कई स्थानों में इस विषय की चर्चा की गई है। इस अध्याय में अनेक तीन श्लोक हैं जिनके द्वारा आपको यही संदेश मिल रहा है, और हम रोज सुनते हैं, रोज सुबह मंदिर में हम लगभग सारे मंदिर में दसम अपराधों का वर्णन कर रहे हैं। भाव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तबूतना पा पाए कृष्ण पदे प्रेम धना, आप अनेक जन्मों पर ये हरि नाम का जाप करो, पर अगर आप अपने आप को अपराधों से नहीं बचा सकोगे तो क्या सब परिणाम होगा, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो हमें अनेक प्रकार के अपराध हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, गुरु अपराध, इन अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। आप शास्त्रों में अनेक कथाएं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज की कथा, दुर्वासा मुनि के हृदय में, क्योंकि थोड़ा द्वेष ईर्ष्या का भाव था, तो जब उन्होंने देखा कि अमरीश महाराज ने जल पी लिया है, जल भी उन्होंने पिया था ब्राह्मणों की सलाह लेकर, अब मैं क्या करूं, एकादशी पालन का समय आ रहा है, तो उन्होंने क्या, अपने सिक्के से क्या पैदा किया, राक्षस। पर भगवान ने अपने, और अमरीश महाराज जुड़े हुए थे भगवान के चरण कमलों के चिंतन में, समय मन और कृष्ण पधारा बंदे हो, भगवान के सुदर्शन चक्र ने अमरीश महाराज का पीछा किया, और जहां भी दुर्वासा मुनि का पीछा किया, दुर्वासा मुनि हर जगह पहुंच पाए। दुर्वासा मुनि के पास खास योगिक सिद्धियां थी, जो वो यात्रा भी करते हैं साधारण स्थिति में अपने हजारों शिष्यों के साथ। जब भगवान के पास भी पहुंचे तो भगवान ने क्या कहा, मैं तुम्हें बाप सही कर सकता, तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने भक्त के पास। तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो भगवान भी इसे माफ नहीं करते। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और मैं उनके हृदय में रहता हूं, मेरे भक्त जो है अत्यंत प्रिय है मुझे। और फिर दुर्वासा मुनि को कहाँ आना पड़ा, अमरीश महाराज के पास। तो वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम होता है। चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों में सबसे दयालु माने जाते हैं। पतित पवन हेतु तावा अवतारा, प्रकट 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 हुए थे किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। कल हम कह रहे थे लोचनदास ठाकुर ने अपनी रचनाओं में चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान के रूप में स्थापित किया है। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु थे, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे। पर भक्तों ने कहा आप सबको दे रहे हो पर अपनी माँ को नहीं दे रहे, जिसने आपको जन्म दिया। महाप्रभु ने कहा मेरी माँ ने अपराध किया है, हालांकि अपराध नहीं था एक रूप से, भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा व्यक्ति हो उसे इससे इस भाव से बचना चाहिए। विश्व रूप जो भगवान के बड़े भाई थे, अद्वैत आचार्य के घर जाते थे, उन दिनों में जब भगवान प्रकट हुए थे समाज की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी, और विश्व रूप अद्वैत आचार्य के घर जाते थे भागवतम का उपदेश सुनने के लिए, कीर्तन में उपस्थित होने के लिए, साधु संग के लिए। सदा वो अद्वैत आचार्य के घर में ही रहते थे ज्यादा समय, और इस कारण जब विश्वरूप घर छोड़कर गए तो सच्ची माता को यह भाव हो विचार हुआ, ये अद्वैता अद्वैता नहीं, ये तो द्वैता है, डुप्लीसिट, इधर कुछ बोलता है और वहां से मेरे बेटे को प्रेरणा दी घर छोड़ दो, मुझे इतना आदर देता है, मुझे माँ मानता है, और बेटे को प्रेरणा दी के घर छोड़ दो। तो माता के में थोड़ा सा क्रोध गलत भाव था, किसके प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति। तो भगवान ने कहा कि भक्तों से मेरी माँ ने अपराध किया है, इसलिए मैं उन्हें यह वर नहीं दे सकता कि भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए। तो भक्त जाकर अद्वैताचार्य को कहते थे कि भगवान कह रहे हैं आपने अपराध किया है, सच्ची माता ने आपके प्रति अपराध किया है। और अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, वो तो भगवान की माता है, मेरी माता है, वो अपराध कैसे कर सकती है, भगवान ने उनके गर्भ से जन्म लिया है और सच्ची माता के गुणों का वर्णन करते करते वो मोहित हो गए, बेहोश हो गए लगभग। और सची माता ने जब देखा वो प्रणाम कर रहे हैं, सची माता पीछे से आई, भगवान के चरणों, अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल ली और माथे में लगाया। भगवान इसे बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, अब मेरी माता को क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान ये दिखाना चाहते, चैतन्य भगवत में कहा है, हालांकि ये एक रूप से अपराध नहीं था, तो भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा व्यक्ति हो, उसे इस अपराध की से मन में भी हमें भक्तों के प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, मन द्वारा क्या करो, मन मन भाव मत भक्तो मन जानियो नमस्कारो। तो हमें वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, तो उन दिनों में जब श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, तो उन दिनों में श्रीवास आंगन में सबको अंदर आने का अधिकार नहीं था। केवल जो उनके प्रिय प्रसिद्ध भक्त थे उन्हें ही अंदर आने का अधिकार था, दूसरों को नहीं। तो नवद्वीप के लोगों में कईयों के मन में बड़ा गलत विचार था। कई कहते थे, वो लोग दरवाजा बंद कर देते, किसी को आने नहीं देते, जरूर कुछ गलत काम करते होंगे। और एक ब्राह्मण था गोपाल चापला, जिसके मन में ईर्ष्या का भाव था, जो सोच रहा था इस अद्वैत आचार्य को इतना आदर मिल रहा है, रोज चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आते हैं और सारी रात कीर्तन होता है, तो उन्होंने उनकी बेइज्जती करने के लिए क्या रख दिया उनके द्वार के सामने? क्या रख दिया? दुर्गा देवी जी की पूजा का सामान, शराब, मांस। तो जब श्रीवास ने दरवाजा खोला सुबह और ये सबको देखा, तो श्रीवास ने कहा, देखो पड़ोसी, मैं तो पखंड कर रहा था कि मैं कृष्ण का उपासक हूं। मैं हूं किसका? मैं हूं दुर्गा का उपासक। किसने विश्वास नहीं किया? गाय के मूत्र से पूरे स्थान को सबने मिलकर साफ कर दिया। परिणाम क्या हुआ? इस ब्राह्मण को क्या हो गई? कोढ़ की बीमारी। महाप्रभु गंगा में जाते थे स्नान करने, और महाप्रभु जब गंगा जा रहे थे, इस ब्राह्मण ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जान बुझकर श्रीवास की बेइज्जती की ईर्ष्या के कारण। महाप्रभु ने कहा, क्या कहा महाप्रभु ने? तुम्हें हजारों हजारों सालों के लिए तड़फना चाहिए, अभी तक तुमने बहुत कम तड़फा है। ये ब्राह्मण को कोढ़ की बीमारी हो गई, जिसके कारण घर से भी सबने निकाल दिया, बदबू आ रही थी शरीर से। तो ये ब्राह्मण तड़फ से गया। फिर कई सालों बाद महाप्रभु से फिर से मिले, जहां वो माफी मांग रहे थे। महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, किसके पास जाओ? शिवाज के पास जाओ। और शिवाज ने फिर माफ किया। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। वैष्णव अपराध का कारण क्या है? ईर्ष्या, द्वेष। इस व्यक्ति के पास मेरे से ज्यादा योग्यता क्यों है? रामचंद्र खान, उसके हृदय में हरिदास ठाकुर के प्रति ईर्ष्या का भाव था। मैं इतना बड़ा जमींदार हूं, मुझे लोग आदर नहीं देते, ये हरिदास, इसको मेरे दूर दूर से लोग आते हैं, इतना आदर देते हैं, तो रामचंद्र खान के मन में क्या भाव था, किसी प्रकार से हरिदास की अगर बेइज्जती हो जाए, ये स्थापित किया जाए कि ढोंगी व्यक्ति है, तो इसके लिए उसने वैश्य का प्रबंध किया। वैश्य को ये कहा किसी प्रकार से इसे विचलित करो, आकर्षित करो। इसका परिणाम क्या हुआ, हरिदास तो विचलित नहीं हुए, वैश्य तो भक्त बन गई। परिणाम क्या हुआ, रामचंद्र खान का घर भी गया, उसको जेल में भी जाना पड़ा और गांव भी उसका नष्ट हो गया। तो वैष्णव अपराध से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और वैष्णव अपराध का कारण क्या है, ईर्ष्या और द्वेष, एनवी। चैतन्य महाप्रभु जब यात्रा करते थे तो भक्त उन्हें निमंत्रण देते थे प्रसाद खाने के लिए। अक्सर भक्त बुलाते थे महाप्रभु को, आप 8 दिन के लिए खाइए। महाप्रभु कहते नहीं, फिर 4 दिन 3 दिन के लिए खाऊंगा। तो सर्वोवर भट्टाचार्य उस समय के बड़े प्रसिद्ध मायावादी प्रचारक थे, पर महाप्रभु जी कृपा से उच्च कोटि के भक्त बन गए और उन्हें निमंत्रण दिया था उनके घर में प्रसाद खाने के लिए। सर्वोमरचार्य की पत्नी के पास खास योग्यता थी, बड़े तेजी के साथ भंडारा तैयार कर देती थी। तो महाप्रभु की प्रशंसा के लिए रोज भंडारा बना रहे थे। और महाप्रभु जी क्योंकि उच्च कोटि के सन्यासी थे, केवल थोड़ा ही खाते थे। पर सर्वोलचार्य को पता था कि उनके जो दामाद हैं अमोगा, उनके प्रति ईर्ष्या है महाप्रभु के प्रति। अमोगा क्या करता था, कानों को दीवार के साथ जोड़ता था, बड़े ध्यान से सुनता था क्या वार्तालाप हो रहा है महाप्रभु का, उनकी कोई कमी को पकड़ने के लिए। और सर्वोमरचार्य जानते थे कि अमोगा में क्या, ये द्वेष ईर्ष्या का भाव है। तो वो खड़े रहते थे डंडी के साथ दरवाजे पर कि अमोगा अंदर नहीं आ पाए। और एक दिन सर्वोमरचार्य को पत्नी का सहयोग देना पड़ा। अमोगा ने आकर देख लिया एक मिनट के लिए महाप्रभु के सामने, कई प्रकार के प्रसाद मिठाई मीरी जी सब पड़ी है। अमोगा कहने लगा, देखो दुनिया को तो दिखा देंगे सन्यासी है पर खाते गृहस्थ से भी ज्यादा। और सर्वोमरचार्य ने उनको पीछा करके उनके भगा दिया। तो महाप्रभु परिणाम क्या हुआ, इस अमोगा को बड़ी गहरी बीमारी हो गई कॉलरा की और मृत्यु के निकट पहुंच रहे थे। क्योंकि महाप्रभु उसके पास आए, महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा अमोगा कैसा है। और जब उसने कहा कि निकट मृत्यु के निकट है, बड़ा गहरा बीमार है, महाप्रभु आए उधर उनके हृदय में हाथ रखा और कहा जब तक ईर्ष्या और द्वेष रहेगा तुम्हारे हृदय में, भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। और जिसके कारण मोगा ने तुरंत पहचाना कि मैंने अपराध किया है और उनके शरणागत हो गए। तो हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो सनातन गोस्वामी को भक्ति का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भक्ति का जो बीज है ये उगता है कब, कब उगता है, जब उसे आप पानी पिलाते हो, है ना, या वो बीज उगता है जब पानी पिलाते हो, और हम पानी पिलाते हैं किस माध्यम से, श्रवणम कीर्तनम से। तो भक्ति का बीज उगेगा, बड़ा होएगा जब आप श्रवणम कीर्तनम करोगे। और बगीचे भक्ति का बड़ी सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा अगर आप क्या करोगे, अगर आप एक पागल हाथी को अंदर आने दोगे आप, तो पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। आप किसी छोटे बच्चे को अपने घर में भागने दो, सब चीज नष्ट कर देगी, कर देगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ये हरि नाम के उच्चारण से ये भक्ति का बगीचा बढ़ता है, पर अगर हम अपराध करेंगे तो सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हम रोज सुबह 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं, और पहला नाम अपराध क्या है, जिन्हें जीवन अर्पण किया भगवान के सेवा। तो हम सबको इस अपराध से बचना चाहिए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि अगर आप कुछ कमी देखो तो आप सोचो कि अगर मैं कमी सुनाऊंगा तो ये भी अपराध हो जाएगा। आप आदर के साथ कमियों को सुना सकते हो, पर ईर्ष्या और द्वेष के प्रभाव में आकर आलोचना करना, निंदा करना, प्रचारप करना, जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के विषय में प्रजलपा कर रहा है और आप बड़ी रुचि के साथ सुनो तो आप भी दोषी बन जाते हो। अगर कई बार आप देखते हो भक्तों को बड़ा आनंद आता है दूसरों की निंदा करने में और रूमर गलत चीजों को फैलाने में, तो आप इसमें साथ देते हो तो आप भी दोषी बन जाते हो। तो ये जो 10 नाम अपराध है जिससे हम सब परिचित हैं, इनसे बचने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। गुरु अवज्ञा, ध्यान पूर्वक जाप नहीं करना, ये अपराधों का गुणगान क्या की रचना रोज की जाती है, किस लिए कि हम ध्यान से सुने और हम प्रयास करें इनसे बचने के लिए। और अगर प्रयास करेंगे तो संभव है बच पाओगे। तो इन श्लोकों का संदेश क्या है कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें एक दूसरे के गुणों पर विचार करना चाहिए, एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, हमें मक्खी जैसा नहीं बनना चाहिए पर मधुमक्खी जैसे। मक्खी और मधुमक्खी में क्या अंतर है, अंतर है नहीं है, क्या अंतर है? मक्खी हमेशा गंदे स्थान में रहती है और मधुमक्खी, तो हमारा भाव मक्खी का रहता है अक्सर। हमें दूसरों की कमियों को देखने में बड़ा आनंद आता है, और जो दूसरों के गुण हैं वो हम देखना नहीं चाहते। अगर आप किसके गुणों की बात करो तो आपको नींद आ जाती है, और कोई किसकी कोई चुगली करो या कुछ गलत खबर फैलाओ तो हम बड़े उत्साह से सुनते हैं और आगे फैला भी देते हैं। तो इस भाव से हमें बचना चाहिए। और कैसे बचोगे, अगर आप शास्त्रों को पढ़ोगे और यहां तक हो सके मन के द्वारा भी अगर आप बच सकते हो तो बहुत बेहतर है। सच्ची माता ने कभी अद्वैताचार्य के विषय में चुगली नहीं की किसी के साथ, उनके मन में यह भाव था कि मेरे ये जो अद्वैताचार्य है ये द्वेता है, मेरे बच्चों को गलत संगत दे रहा है, ये गलत भाव था। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए, और ये संभव है अगर हम कहना शास्त्रों का अध्ययन करें। तो हमें एक दूसरे के गुणों का भाव देखना चाहिए और हमें साथ में सहनशील भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई कुछ कहे, कोई हमारे बारे में कह रहा गलत का, तो हम भी दूसरे के बारे में कहें गलत खबर फैलाएंगे। नहीं, आप देख रहे हो यहाँ रघुना कह रहे हैं, हालांकि मैंने आपकी बेइज्जती की है, आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमें याद है एक समय हम प्रभा जी के साथ एक स्कूल प्रोग्राम में गए थे कैनेडा में, 68 की बात है, और प्रभा जी ने लेक्चर के बाद पूछा लोगों से एनी क्वेश्चंस। वहाँ एक भारतीय, एक प्रभा जी ने लेक्चर दिया था क्रिश्चियन स्कूल में, और उस लेक्चर में कई पादरी और नंस भी बैठे थे। तो एक इंडियन व्यक्ति था जो रोज प्रभुपाद को मिलने आता था, पर उसने प्रभुपाद जी की बड़ी बेइज्जती कर दी सबके सामने। आप ये दिव्य, ये हिंदू संदेश क्यों दे रहे हो क्रिश्चियन देश में? कृष्णों के बाद अपना धर्म है, ये धर्म की कोई जरूरत नहीं है। पर प्रभुपाद जी ने बड़े शांति के साथ सब कुछ सह लिया। भक्तों में थोड़ा क्रोध आया था, प्रभुपाद बिल्कुल शांत थे। तो उसी प्रकार, हालांकि जद भारत की बेइज्जती की महाराज रघुनंदन ने, वो बड़े शांत थे। फिर जब वो बोलने लगे कि इसलिए बोला क्योंकि जद भारत के अपराधों को अपने उसे उन्हें बचाना चाहते थे। तो भक्त का व्यवहार होना चाहिए कि हम अपराधों से बचें, और ये संभव है अगर आपके पास शास्त्र ज्ञान भी हो। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, हमें दूसरों के गुणों को देखना चाहिए और अवगुणों पर नहीं, और हमारा प्रयास होना चाहिए जैसे जद भारत का था कि अब मैंने फिर से एक गलती नहीं करनी, पहले गलती की है अब नहीं। इसलिए उनका व्यवहार था गूंगे और बहरे, पर असल में वो गूंगे बहरे नहीं थे। जब बोलने का समय आया तो वो शेर जैसे बोलने लगे, है ना। पहले तो उन्होंने सह लिया सब कुछ, पर जब उन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो शेर जैसे बोलने लगे, और जिसके कारण रघुनाथ समझ गए क्या कि ये तो आत्मज्ञान ही है, ये तो मूर्ख व्यक्ति नहीं है। एक समय एक प्रभुपाद जी के अमेरिकन शिष्य ने पूछा, हाउ कैन आई बी हम्बल एंड प्रीच एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारा सिद्धांत है त्रिनादपि सुनिचे ना, वो भी सही ना। पर जब आप प्रचार के लिए जाओ तो बड़े उत्साह से बोलना पड़ता है शेर जैसे। तो उनका प्रश्न था, हाउ टू बी हम्बल एंड प्रीच एट द सेम टाइम। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, बी अ लैम एट होम एंड अ लायन आउटसाइड। कि भक्तों के साथ जब व्यवहार है लैम जैसे व्यवहार रखो, और जब प्रचार करने जाओ तो शेर जैसे जाओ। तो ये नहीं घर में शेर बाहर लैम। भक्तों में क्या देखते हो, घर में शेर बन जाते हैं और जब प्रचार करने जाते हैं तो लैम मीन लैम का व्यवहार हो जाता है। तो घर में क्या हो लैम जैसे, बड़े विनम्र। जब प्रचार करने जाओगे शेर जैसे प्रचार करना पड़ता है। अब प्रभुपाद जी के प्रचार को देखो, प्रभुपाद जी भी शेर जैसे प्रचार करते थे। एक समय प्रभुपाद जी ऋषिकेश में लेक्चर दे रहे थे, और प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करते थे, हम नहीं कर सकते वह प्रभुपाद जी कर सकते थे। तो एक अमेरिकन औरत थी ऑडियंस में, उसने कहा, स्वामी जी शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, यू आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर फुंसी है आपके हाथ में जिसमें पस है, तो पस निकालने के लिए आपको फूंक देना पड़ेगा या दबाना पड़ेगा? तो उसने कहा दबाना पड़ेगा। तो डिवोटी है, आई शुड प्रीच लाइक अ लायन, पर लायन जैसे प्रचार करोगे प्रचार करोगे तो लोग सुनेंगे, पर वी डू इट वेरी विद पेशेंस. तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें. जैसे हमने कहा कि अगर कोई सुधार हम देखना, कई बार आपको कोई कमियां दिखेंगी, तो ये नहीं कि आप उन कमियों को नहीं सुना सकते. ऐसे भाव होगा तो हम किसी को करेक्ट ही नहीं करेंगे, पर हमें आदर के साथ ईर्ष्या और द्वेष से बचते हुए अपने भावों विचारों को आगे प्रस्तुत करना चाहिए. और वैसा भाव रहेगा तो वो वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा. तो महाराज रघुगुना हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार किससे बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए. तो अगर हम प्रयास करेंगे तो बच पाएंगे. और जैसे कि जब भारत ने निश्चित कर लिया, निर्णय कर लिया था, आज मैंने वो गलती फिर से नहीं करनी, इसलिए उनका व्यवहार था गूंगे और बहरे का. उसी प्रकार हमारे में ये भाव होना चाहिए. हमने भी अभी हम भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं, तो भक्ति के मार्ग से जुड़ने से पहले जो गलत कार्य कर रहे थे, हमने भी उन कार्यों से बचना है. और अगर हम साधु संघ में रहेंगे, भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ये साधु संघ के द्वारा आप वैष्णव अपराध से भी बच सकते हो. क्योंकि अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे भाव रहेंगे, अच्छे भावों को अनुकूल करोगे, और अच्छे भावों को अनुकूल करोगे तो आप बच जाओगे ईर्ष्या और द्वेष से. हम सबको ईर्ष्या और द्वेष से बचना है, और ईर्ष्या और द्वेष के भावों से बच सकते हो अगर आप भक्ति की विधियों का पालन करो, ध्यान पूर्वक जाप करो, शास्त्र पढ़ो, तो आप इन अनर्थ से बच सकते हो. नहीं तो हम अनर्थ के प्रभाव में रहते हैं, और उनके प्रभाव में रहेंगे तो वैसा अपराध भी कर पाएंगे. इसका एक ही उपाय है, जैसे प्रभुपाद जी ने अनेक समय कहा, ध्यान पूर्वक जाप करना, शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों के संग में रहना, फिर आप इस भाव से बच सकते हो. सबका यही विचार है. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न है किसका, पूछे.
हरे कृष्ण महाराज. थैंक यू विवेक महाराज. महाराज प्रवचन में शुरुआत में आप अपने एग्जांपल्स दिए थे दुर्वासा मुनि के, और बाकी जो जो द्वेष के कारण वैष्णव अपराध कर रहे थे. फिर हम आगे हम थे कि कैसे हम दूसरे भक्तों में दोष देखते हैं. तो महाराज जब हम अपने अपना गुण ज्यादा देखते हैं और दूसरे भक्तों में दोष देखते हैं, तो उसमें द्वेष की भावना से वो मतलब इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ एनवी ओनली, और इज इट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस, एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन दैट महाराज.
When we look at the weak points of other people, कई बार हमारे में अक्सर क्या भाव रहता है, हम भगवान की खास देन है और दूसरे व्यक्तियों में सारे दोष है. हम एवरीवन थिंक्स इज गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी. हम सोचते हैं कि हमारे में सारे गुण है, दूसरों में सारे अवगुण है. आप अगर दो व्यक्ति झगड़ा भी कर रहे हैं, दोनों क्या कहेंगे, हम बड़े सिंसियर हैं, श्रद्धालु हैं, ईमानदार हैं, हमारे में कोई चापलूसी का भाव नहीं है, वो पॉलिटिशियन है. अगर किसी बात में एग्रीमेंट नहीं हो हम तुरंत क्या कह देते हैं, वो तो पॉलिटिशियन है पर मैं सादा भक्त हूँ. हमारे गुणों को देखते हैं हम, तो हमें दूसरों को भी गुणों को देखना चाहिए. ये नहीं कि हमारे में सारे गुण हैं, दूसरे व्यक्ति में सारे दोष हैं. अगर आप देखने जाओ तो सब में कुछ ना कुछ गुण तो आपको मिलेगा, तो उसी गुण का भाव रखो. क्लास गो ऑन. और यस,
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत 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 धन्यवाद महत्वपूर्ण और रोचक प्रवचन के लिए. मेरा प्रश्न है कि जब हम इस्कॉन में आते हैं और भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तो हमारे माता पिता और रिश्तेदार इस्कॉन के भक्तों के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष रखते हैं और उनके प्रति अपराध करते हैं, तो वो लोग इन अपराधों से वो कैसे मुक्त हो सकते हैं?
उनकी स्थिति जरा अलग है। नहीं, नहीं नहीं, उनकी स्थिति अलग इसलिए है, वो अभी तक भक्त नहीं बने। जैसे आप कई बार प्रचार के लिए जाते हो तो लोग आपको दोष देते हैं, क्या हर साल आ जाते हो गीता बांटने के लिए, कोई काम धंधा नहीं है। वो एक रूप से आध्यात्मिक ज्ञान से के विषय में अज्ञान है, पर जिन व्यक्तियों के पास ज्ञान है वो अपराध करें तो वो ज्यादा भारी बन जाता है। और जो रिश्तेदार है, जब आप वो भक्तों को द्वेष, तो प्रभुपाद जी भी इस विषय की चर्चा करते हैं, जैसे दक्षा ने नारद मुनि को श्राप दी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, उसी प्रकार माँ बाप मुझे भी श्राप देते हैं कि मैं किधर टिक नहीं पाऊंगा। तो ये तो प्राचीन रिवाज है, जब कोई भक्त बनना चाहे तो कई बार रिश्तेदार विरोध करते हैं, और ये सारे विश्व में है, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए ये। तो आपका प्रश्न था कि वो रिश्तेदार कैसे बचेंगे अपराध से, है ना? वो रिश्तेदार बचेंगे अपराध से अगर वो अपने बच्चों को भक्त बने दें। क्योंकि अगर किसी खानदान में कोई भक्त बन जाता है तो कई पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, अगर वो अच्छा भक्त बन जाएगा।
धन्यवाद।
और कोई प्रश्न?
आप तो इतना पूरा इस्कॉन के जगत में जैसे मैनेजमेंट करते समय कभी कभी भक्तों में दोष देख के उनको सुधारने के लिए देखना होता है, तो सुनते हैं लेकिन बाद में वो हृदय में अगर बैठ जाता है तो वो जप में भी आता है और हमारे को परेशान करता है। तो आपने तो इतने सारे भक्तों को वो हेल्प कर रहे हैं और फिर भी आप इतना बिल्कुल पद्म पद्म इमाम भसा मतलब ऊपर ही रहते हैं उससे, तो ये क्या हृदय चाहिए जिससे हम इस सबसे परे रहें फिर भी हम सेवा।
आपका मतलब है कि अगर आप मान लो अधिकारी हो, मैनेजर हो, और आप किसी में कोई कमी देखते हो आप उसको सुधारने जाओ, तो अगर आप मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ हो, और आप देख रहे हो कि कोई भक्त ठीक व्यवहार नहीं कर रहा, तो हमें सुधारना चाहिए, पर प्रेम के साथ, क्योंकि आप सुधारोगे नहीं तो गलत संदेश आएगा। चैतन्य महाप्रभु का हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रकट करना है, तो हमारा आचरण बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस गण संस्था में शुद्ध भाव रहे, यानी कि हम मुंह में राम राम बगल में छुरी का व्यवहार रखे। अगर हम देखते हैं कि कुछ गलत व्यवहार हो रहा है तो हमें ठीक रूप से सुधारना चाहिए। अगर कोई नहीं सुधरे तो हम ये भी कह सकते हैं फिर आप किसी और स्थान में जाओ रहने को, क्योंकि हमें संस्था में हमें चाहिए भक्त जो कि सब विधियों का पालन करें। इधर करेक्ट राधे श्याम, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर हम इस भक्त को सुधारेंगे बोलेंगे कमी को दूर करो ये वैष्णव अपराध होगा, क्योंकि हम ईर्ष्या द्वेष के कारण नहीं कर रहे, हम प्रभुपाद जी की शिक्षा के आधार पर कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ये नियमों का पालन नहीं कर रहा। ओके, एनी मोर? यस,
हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कई बार ऐसा होता है कि हमको ये पता नहीं चलता है कि हम अपराध कर रहे हैं या उसका दोष को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये कैसे पता चले?
जब शक हो कि हम अपराध कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपने जो स्पिरिचुअल सीनियर हैं उनकी राय ले सकते हो. इस्कॉन में हर लेवल पर स्पिरिचुअल सीनियर हैं, काउंसलर हैं, उनकी राय ले सकते हो. अगर आपके मन में शक है मैं कहीं अपराध तो नहीं कर रहा, तो आप गुरु साधु शास्त्र द्वारा वेरीफाई कर सकते हो. ओके, एनी मोर क्वेश्चन?
हरे कृष्ण महाराज.
यस, वेयर द माइक. ओके, यस.
हरे कृष्ण. जब महाराज हम कॉलेज में जाते हैं तब हम उन्हें पता चलता है फ्रेंड लोगों को कि हम इस्कॉन से जुड़े, तो हमें वो चिढ़ाते हैं. तो फिर हम अभी नए नए हैं तो फिर हमें गुस्सा आता है, हमें कभी बोल देते तो फिर बोलते हैं कि तो हम इस्कॉन में जाके इतना अच्छा फिलोसॉफी सीखते हो और ऐसे करते हो. तो तब हम हमारे मेन में हम माइंड में डेविएट हो जाते तो फिर हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो तब क्या करना चाहिए?
अगर कोई आपको, आप कॉलेज में जाते हो कोई आपको छेड़ रहा है, क्या तुम हरे कृष्ण भक्त बन गए, आपको गुस्सा आए, तो वो वैष्णव अपराध नहीं है. जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य नंदा मदाई ने पत्थर फेंका है, खून बह रहा है, महाप्रभु क्रोधित होकर आए सुदर्शन चक्र के साथ, है ना. ये नहीं कि अगर आप प्रचार करने जा रहे हो और कोई आपको प्रचार में रोक रहा है, हंस रहा है, गाली दे रहा है और आप कुछ कहो तो वो अपराध नहीं है. तो अगर कोई आपको कह रहा है तुम भाग क्यों बन गए, जाप क्यों करते हो, तिलक क्यों लगाते हो, और फिर अगर आप कुछ कहो तो वो अपराध नहीं है, फिर तो हमें सारे विश्व में प्रचार बंद करना पड़ेगा. क्योंकि आप जब प्रचार के लिए जाते हो, जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बोला घर घर जाओ बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तो कई घरों में वो गए, लोगों ने उनका स्वागत किया, भाई कई घरों में गए लोग उनको दोष दे रहे थे, कह रहे थे ये तो जासूस है स्वामी के रूप में, देखने आए हैं क्या है घर में, फिर चोरी करने आएंगे. तो कई घरों में उनका दरवाजा खोलते ही नहीं थे. तो जब प्रचार करते हो तो कई लोग आपका विरोध भी करेंगे, और ये और कई लोग प्रयास करेंगे प्रचार को रोकने के लिए. जैसे कई स्थानों में भारत में भी कई जगह प्रचार करते हो और दूसरे लोग विरोध करते हैं, तो हमें जब वो विरोध करते हैं तो हमें भी एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ता है. ओके,
हरे कृष्ण. एक छोटा सा प्रश्न है मेरा. वो आपने कहा कि अच्छे गुणों का स्तुति करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन एक ही गुण ऐसा होता है कि जिनके पास जाने के लिए डर लगता है.
एक ही क्या अवगुण होता है?
हाँ, एक ही गुण होता है, बड़ा खतरनाक होता है.
गुण या अवगुण?
अवगुण, अवगुण.
साहब के गुणों को ही देखो, अवगुणों को मत देखो. और अगर आप जानते नहीं उनसे व्यवहार कैसे करने को, सीनियर भक्त का सहयोग लो. और प्रभु ने एक और चीज प्रभु ने कही जो मैंने नहीं कहा, हम जब एक दूसरे से संबंध रखें हमें एक दूसरे के नाम के आगे प्रभु बुलाना चाहिए. प्रभु मतलब तो मेरे स्वामी हो. जैसे महाराज रघुनाथ क्या कह रहे हैं श्लोक में, हे मेरे स्वामी, है ना. तो हमें आजकल ये प्रभु बुलाने का रिवाज मुझे लगता है मिट गया है. तो जब प्रभु जी ने जब इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी तो उन दिनों में सब एक दूसरे के नाम के साथ प्रभु बोलते थे, राधे श्याम प्रभु, ये राधे साधी प्रभु। पर आजकल ज्यादा हम बोलते नहीं, उल्टा आजकल कई बार मैं देखता हूं एब्रीविएटेड नाम होते लोगों को बुलाते, एसके जी के एल के कि नहीं। पर प्रभुपाद सर वी शुड कॉल ईच अदर प्रभुज, और प्रभु बुलाओगे तो खुद ही खुद एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होएगा, है ना। प्रभुपाद सेड दैट वी शुड कॉल ईच अदर प्रभु। ओके ओके लास्ट,
थैंक यू महाराज फॉर अ वंडरफुल क्लास। आप एक एक बात है अपराध करने की और दूसरी बात है अपराध लेने की। तो एक अपराध अगर व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति करता है, तो जिसके प्रति अपराध हुआ है उसकी अगर सहनशीलता खत्म हो जाती है तो अपराध ले बैठता है। तो सहनशीलता मेंटेन करने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो किसी का अपराध ना ले।
सिद्धार्थ पिसु नीचे ना थरोड़ पिसा ना मानी ना माना देना के दिन सारे। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो थोड़ा सहलो, और वो बेइज्जती करते जाए तो उसको सुनाओ बस इज्जत के साथ। अगर हम हर कदम में नेले पे देला करेंगे तो झगड़ा हमेशा बढ़ते जाएगा, किसी को तो सहनशील होना पड़ेगा। और कलयुग में लोग आपको दोष देंगे, आलोचना करेंगे, इसलिए महाप्रभु ने कहा ये सहनशील होना चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज। महाराज थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्लास। महाराज हम देखते हैं कि कभी कभी कोई हम डिवोटीज के संग में सेवा करते हैं।
किसके संग में?
डिवोटीज के संग में, भक्तों के संग में कोई सेवा, ज्वाइंट सेवा करते हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो या, तो उसमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है या जाने अनजाने में अपराध होता है, तो उसका उपाय क्या है, उसका कैसे, हाउ डू वी रिपेंट। और
अगर आपको लगे कि मैंने अपराध किया है तो जिस व्यक्ति के प्रति अपराध किया है उसे यू कैन बेग पार्डन। और कभी कभी लोग कहते, भक्त पूछते हैं एक प्रश्न, कहते हैं कि अगर मैंने अपराध किया है और मैं उसे माफी मांगने जाऊंगा और वो माफी नहीं करेगा तो आप अपना कर्तव्य कर दो, दूसरा व्यक्ति बेशक अपना कर्तव्य नहीं करे। ओके लास्ट क्वेश्चन, आई एम गेटिंग लेट। माताओं का प्रश्न है। ओके
हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। कुछ भक्त ऐसा सोचते हैं कि मंदिर में रह के वैष्णव का अपराध होता है, तो हम इससे अच्छा बेहतर है कि हम मंदिर के बाहर रहकर भक्ति करें।
ये ज्यादा खतरनाक है। अगर आप मंदिर के बाहर रहोगे, भक्तों की संगत से दूर रहोगे, तो माया का और ज्यादा प्रभाव रहेगा। और कई बार ये भाव बहाना बन जाता है माया में जाने का। मैं मंदिर में जाता बहुत अपराध करता हूं तो मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर नहीं जाओगे साधु संग में नहीं रहोगे तो माया का प्रभाव और बढ़ेगा। अगर आप प्रभुपा जी ने कहा अपराधों से बचने के लिए हरि नाम को जाप करो, दसम अपराधों से बचो, शास्त्रों में का अध्ययन करो, भक्तों के संग में रहो, और इस भक्तों के संग में रहोगे तो अपराधों से भी बचोगे। हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।